शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के अनमोल रत्नों का आपके अपने ही घर में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सबके समक्ष अपने परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी दीदी जी विराजमान है, जो कि मजलिस पार्क सेवा केंद्रों के इंचार्ज दीदी हैं। दीदी की मुख्य क्वालिफिकेशन जो है एमए बीएड है। दीदी पिछले 45 वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चल रही हैं और 44 वर्ष से विशेष समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। दीदी विशेष रूप से स्पोर्ट्स विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और एजुकेशन विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। दीदी की विशेष हॉबी कविता और लेख लिखना है, जो कि हम सब के समक्ष विराजमान है, तो हम सब करतल ध्वनि से ऐसी दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। कितना सुंदर भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल, इतना प्यारा रूहानी परिवार और उसमें आपके आगमन पर आपका स्वागत हुआ। न केवल यहाँ, जब आपने इस विकारी दुनिया की अशांति देखी, हलचल देखी और उस घोर अंधकार के बीच में आपको सत्य ज्ञान के प्रकाश की रेखा मिली, आप सब वो सच्चे हीरे हैं, वो विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने इस सत्य ज्ञान की राह पकड़ी, इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा है, अपने लिए ताली बजाओ, खुशी आती है, मन की भी ताली बजे। आप भगवान के सिलेक्टेड चैतन्य पुष्प, परमात्मा को तो सभी याद करते हैं, ये मेरा काम कर दो, ये मेरी मन की मुराद पूरी कर दो, परमात्मा का सहयोग तो सभी मांगते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है जो परम पिता हमारा सहयोग मांग रहे हैं और उसमें वो भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो जो परमात्मा का सहयोग देने के लिए इस ईश्वरीय कार्य में आप उनकी भुजा बने। कौन सा सहयोग? सतयुग की स्थापना, स्वर्णिम युग की तैयारी। आज की दुनिया में इस सहयोग को देने के लिए भी कोई तैयार नहीं, समय नहीं है, जिम्मेवारियां हैं, ये वो, पर आपने ना इधर ना उधर कहीं भी नहीं देखा और जीवन में ईश्वरीय राह को सिलेक्ट किया, इस सिलेक्शन की भी आपको मुबारक हो, है ना? और आप कैसे भी करके टाइम निकाल के परमात्मा मिलन मनाने के लिए आए। इतना बड़ा बेहद का परिवार किसी का नहीं होता है जितना बड़ा परिवार आप सबको मिला है। अभी तक सुनते थे वसुधैव कुटुम्बकम, पर शिव बाबा ने पूरी वसुधा में से चुन चुन के कांटे फूल बनाए, उनमें से आप हो, पूरी पृथ्वी को कुटुम्ब बना के दिखा दिया। कितनी अच्छी बात है, और सेवा के लिए भी तैयार रहे। अब पहचान मिल गई, आत्मिक हीरा चमकने भी लग गया, फिर हमारे पार्षद बाबा इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पुरुषार्थ करो बच्चे, पुरुषार्थ करो। कभी कहते हैं हर नवीनता के लिए तैयार रहो, कभी कहते हैं इतना समय पालना ली है, अब पालना देने वाले बनो, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वरदानी मूर्त बना रहे हैं। अभी तक तो आके कहते थे दे दे शिव बाबा, ये दे ये दे, देवी देवताओं के आगे भी। अभी शिव बाबा ने हमें दाता बना रहा है, मास्टर दाता, फिर उसमें हमें टाइम क्यों लगता है? क्यों इतना पुरुषार्थ शिव बाबा हम बच्चों पे करते हैं? क्योंकि हमारी स्थिति डगमग हो जाती है और कभी कभी हम किम कर्तव्य विमूढ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें किस स्थिति पे आ जाते हैं। परिवार की परीक्षा, धन की परीक्षा, तन की परीक्षा, व्यक्तियों का तरह तरह के बातें सुनने को मिलती हैं, फिर उन सब को भी छोड़ के आए तो अपने इस परिवार से भी पेपर आ जाता है। इन परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में हम कभी भी चलायमान न हो, अचल अडोल रहे, आज हम इस पे विचार कर लेवे तो अच्छा ही है, इसमें हम सबका भला ही होगा। पहले किसी भी बीमारी के लिए पहले तो बीमारी पता होनी चाहिए, फिर उसका कारण पता होना चाहिए, फिर निवारण के लिए दवाई कौन सी चाहिए, फिर उसके पश्चात परहेज भी होते हैं, दवा दुआ परहेज, ये सभी हम आत्माओं को ठीक करते हैं। इसके लिए हर एक की बीमारी अलग अलग है, एक दवाई उस दुनिया में तो सब बीमारियों के लिए है नहीं, पर इस रूहानी संसार में है, एक ही दवाई सबको सूट कर जाए। अभी हम इस पर विचार करें कि हमारी परिस्थिति डगमग होती क्यों है। सुनाने को तो कई कारण सभी सुना देंगे, सबको आता है, सभी मुरली सुनते हैं, लेकिन जब अपने साथ कोई बात आती है ना, उस समय में भूल जाता है। और हम जो परीक्षा आती है, जिस तरफ से आंधी आई, हम कहते हाँ ठीक तो है। कई बार कहते हैं अब्दुल्ला दीवाने क्यों दूसरे की चिंता में, हमारे अपने साथ कोई समस्या नहीं है, किसी बेचारी ने आके बेचारे ने आके हमारे सामने कह दिया, देखो ना मैं इतने सच्चे मन से चलती हूँ, मैं ये करता हूँ, पर फिर भी मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी ये बात। कोई कहते हैं मेरा योग नहीं लगता है, सेवा भी करते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, योगी नहीं लगता है। ये कई बातें ऐसी आ जाती हैं जो हमारी स्थिति को डगमग कर देती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये जो कहते हैं ना, वो किसी ने अपने दिल की बात सुनाई, दूसरी कहती है वो साथ में ये कह के रखेगी, सुनाना नहीं किसी को, मैं दिल हल्का कर रही हूँ, और दीदी को तो खास नहीं सुनाना, सबको कह देंगी। ये केवल आप इस रहस्य को नहीं समझते हैं, समाधान थोड़ी मिलना है ऐसे कह के वो आपको मन ही मन घुटने पे विवश कर देते हैं। आप ये समझने लगते हो कि ये हमारी मीत है, ये मेरे भले की बात कहती है। कही ना बहन, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे सुना दो। जब दीदी हल नहीं कर सकती, बाबा की मुरली हल नहीं कर पा रही तुम्हारा, तो जिसको आत्मा कुछ सुना रहे हो वो हल करेगी? करेगी नहीं, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा आपका। आप सुन रहे हो ना, जो उसके मन की बात है वो जन्म से हमारे में भी आ जाएगी। इतनी पावर तो होनी चाहिए ना। इसलिए ये संकल्प करो, अपनी अवस्था अच्छी रखनी है तो एक बाबा को सुनाए, एक बाबा को सुनाए हम, और अपने निमित्त बने हुओं को। कचरा जो होता है ना, वो डस्टबिन में ही डाला जाता है, थूका जगह जगह नहीं जाता, इससे गंदगी फैलती है। वाश बेसिन में एक ही जगह करेंगे ना तो आपको समाधान मिलेगा। एक ये धारणा कर लो, हमने जो सुनाना है ना, बाप को सुनाना है। इसके पश्चात मुझे, हम कहते हैं मैं तो बहुत पक्के हैं, हम किसी के भी संग दोष में नहीं आते कभी भी। संग दोष भी अवस्था को डाउन करता है, लेकिन आप देखो ये संग ऐसा है, सुनाने वाला ब्रह्मचारी रहता है, ज्ञानी योगी है, और धारणा मूर्त दिख रहा है, और आपको ऐसे तरीके से प्रभावित करेंगे जो आप उसी को भगवान मान बैठते हो। फिर जैसे चलाए चलने लग जाते हैं। तो हमें सखा सखी जो बनाना है, सर्व संबंधी एक शिव बाबा मेरा। ये पाठ हमारे भारतवर्ष में न केवल इस टाइम सुन रहे हो, बचपन से घुट्टी की तरह पिलाया गया है। विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो आंख बंद करके गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा, तुम ही स्वामी, तुम ही। जब बंधु सखा के टाइम सामने बंधु सखा आ गया तो सुबह क्या बोला था तुम हो वो भूल गए। मम्मी आ गई सामने, पिताजी आ गए सामने, मित्र आ गए, खेलने चल पड़े और सब भूल गए सुबह हमने क्या गाया था। वो टाइम देखते रहते हैं जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब हम आए, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, हमें समझ आई हम गाते नहीं, हमें बनाना है उसको। जब माँ वही है, पिता वही है, बंधु वही है, सखा वही है, स्वामी वही है, आप बता दो कौन सा रिश्ता रह गया है। जीवन का कंपेनियन भी वही है, अमर भी वही है, ना मरे ना छोड़े ना धोखा देवे। और कोई संबंध मुझे तो पता नहीं है, हो तो बता दो, वो भी उसको बना लेना, ठीक है। तो जो गाते थे वो अभी जीवन में है। आप हमेशा क्या सुनते हो, करे सो पावे, सुने सो पावे, सराहे सो पावे, सुनावे सो पावे, या करे सो पावे। हमें बाबा ने कर्म योगी बनाया है। फिर एक जैसी जगह बैठते हैं, एक कहावत आती है, एक ही सूर्य तपत देता है, एक ही चांद शीतलता देता है, एक ही जल सिंचित करता है, फिर भी फूल फूल रहा, कांटा कांटा रहा, क्यों? उसके ग्रहण करने के ऊपर है ना। शिव बाबा हम बच्चों को, बाप दादा, दृष्टि देते हैं सबको एक जैसी, विदाउट एनी डिफरेंस, भेदभाव नहीं होता है। एक जैसी मुरली चलती है, नो प्राइवेट ट्यूशन। किसी भी दादी को किसी प्राइवेट कमरे में अव्यक्त बाप दादा आ जाए मुरली सुनाई हो, कभी सुना ऐसे नहीं ना। चार साल से आने वाला, 40 साल से आने वाला, 75 वर्ष से आने वाला और 1 साल से आने वाला, सभी सभा में बैठ के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। फिर बाबा ये क्यों कहते हैं, राजा भी इसी में से बनेंगे सुनने वालों में से, प्रजा भी इसी में से बनेंगे, दास दासी भी इसी में से बनेंगे, क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना हो रही है, देवताई धर्म की भी स्थापना हो रही है, क्यों? अवश्य हमारे सुन के धारण करने में अंतर। कैसे अंतर है? कोई तो मुरली में जैसे किसी ने सुना, हम सभी सुनते हैं ना, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे संग दोष में नहीं आना, बच्चे डेली क्लास करो, बच्चे अमृत वेले उठो, चार्ट लिखो, कोई तो प्रैक्टिकल में अमृत वेले अवश्य उठते हैं, कोई कभी कभी मिस करते हैं, किसी कोई ऐसे भी हैं जिनको संकल्प ही नहीं आता अमृत वेले उठना भी है। चलो बाबा तो अपना बाप है ना, कभी भी याद कर लेंगे। कई तो पहले से अपने को समझा के रखते हैं, सारा दिन ड्यूटी देनी है, सवेरे नींद पूरी नहीं करेंगे फिर हमें तकलीफ हो जाएगी, फिर हम सो नहीं सकेंगे, फिर जुट के आएंगे, सुबह थोड़ा सो लो कोई बात, ऐसा समझा लेते हैं। नंबर वार हो गए, किसी ने 4 बजे से 4:45 तक पूरा साल योग किया, किसी ने 8 महीने योग किया, किसी ने 15 मिनट उठ के बाबा 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 करके सो गए, किसी ने रजाई में ही बैठ के रजाई लेनी चाहिए, त्याग नहीं किया रजाई का, फर्क पड़ गया। तो हम और कोई बिल्कुल अंगे अखरे जो बाबा कहते हैं ना उसको जीवन में उतारते हैं। मेरे बाबा ने मना किया है, तुम कहीं भी जाओ तो तुम्हें साक्षात्कार मूर्त बन के जाना है। कहीं जाएंगे शादी मुरादी में सोलो श्रृंगार करके, लगता ही नहीं ये बीके भी हैं, कभी मुरली भी सुनती होंगी, और कभी बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे, फर्क पड़ेगा। कोई कहेंगे अभी यहाँ तो सब खा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी तो समाज क्या कहेगा, इस समाज को इस टाइम भूल जाते हैं, धारणा में फर्क पड़ गया। इसी तरह से किसी की समाने की शक्ति बहुत है, किसी का हाजमा थोड़ा दुरुस्त नहीं है, जब तक सुन ली कोई बात पेट में पचती नहीं है जब तक कई जगह सुना नहीं लेंगे, डिस्टर्बेंस होने लगती है उनको, फर्क पड़ गया। हम राजा बने, प्रजा बने, दास दासी बने, ये सब हमारे हाथ में है, वी आर मेकर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी, हम अपने भाग्य विधाता स्वयं है। लेकिन ये सोच के कोई नहीं बैठता, 7 बजे भी उठने वाला सोचता है मैं तो राजा बनूंगा, कि बाबा के राजे बच्चे तो है ना। फिर सतयुग में जाना है, जीवन में सत्य का टेस्ट पता नहीं है, कैसे जाएंगे, कितना झूठ बोल के कहेंगे युक्ति है, और सत्य और असत्य का डिफरेंस ही पता नहीं है, मुझसे निकल क्या रहा है डिफरेंस नहीं पता, और कोई बहुत तोल तोल के बोलते हैं, अप्लाई करते हैं, कोई कहते हैं कहना होता है ना, करा थोड़ी जाता है, सब कुछ करने का थोड़ी है। एक को हमने पूछा आप अमृत वेले उठते हो, बोलते हैं हमने अभी अपने ऊपर इतनी जबरदस्ती नहीं की, अपने साथ सहज राजयोग है, सहज सहज चलते हैं। अब आप बताइए, जितनी बड़ी डिग्री लेनी है उतना पुरुषार्थ तो अधिक करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, अगर आईएएस का इम्तिहान देना है तो पढ़ना अधिक पड़ेगा, कई कहते हैं देखो हमारी उम्र देखो ना, ठंड का मौसम है, 80 साल के हो गए हैं, हम घर में योग लगा लेंगे, बहुत समय कई साल मुरली सुन ली, 70 साल सुन ली, 60 सुन ली, लेकिन अपने मन को स्वयं ही कमजोर कर देते हैं। हमारी आदरणीय दादियों को देखो, वंडर है, एक 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, उनसे बढ़ के ये भी एक वंडर है। इतनी बड़ी उम्र होने पर कितना उमंग है, क्या उनके पास कोई पेपर नहीं आते होंगे? आते होंगे ना, बहुत अधिक आते हैं। देखो एक बार की बात है, विश्व किशोर दादा होते थे और एक भाई थे जो कंस्ट्रक्शन का काम कराते थे, बैगरी पार्ट का ड्रेन था, और विश्व किशोर भाव जो थे वो अहमदाबाद माल लेने के लिए गए। ट्रक माल आया, 5,000 रुपए का माल था। चंद्रहास दादा ने शायद उसकी एंट्री करनी थी, थोड़ा नामों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसने आके ट्रक दे भी दिया, एंट्री करनी भूल गई क्या हुआ, और जब वक्त आया सामने कार्य करने का तो भाई बहुत अच्छे थे जिन्होंने एंट्री करनी थी, वो कहते माल ही नहीं आया, आया ही नहीं माल, पर्ची आई नहीं मेरे पास, पर्ची नहीं आई। वो भाई बाबा को बार बार कहे कि बाबा मैंने पर्ची दी है लाके, उस जमाने के 5,000 इस टाइम के कितने होंगे, कितनी महंगाई बढ़ गई है, उस टाइम बैगरी पार्ट के टाइम 5,000 भी कितना मुश्किल यज्ञ से निकला होगा। बाबा चुप रहे, दोनों की बात सुनी और बाबा शांत रहे, चुप रहे। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 5,000 रुपया और दिया, ठीक है ले आओ। माल तो रोज आता ही था, उसी में लग गया, किसी को कुछ भी नहीं कहा बाबा ने, साकार बाबा की बात है। 20-25 दिन महीना बीता, जो जिसने पर्ची ली थी, रसीद ली थी, वो उसके कागजों में से पर्ची निकल आई, वो एंट्री करना भूल गया, पर्ची रख दी अपने डायरी में या कहाँ रख दी, वो भूल गया। पर्ची सामने आई तो चौंक गया एकदम, और उसको लगा ओहो मैं उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा, बाबा को मुखड़ा कैसे दिखाऊंगा, इतनी बड़ी भूल में से हो कैसे गई। फिर उसको सब कुछ याद आ गया, और बाबा के सामने जावे कैसे, शर्म बहुत आ रही थी। दूसरे को बोला और को बोला, बाबा तक बात पहुंची, बाबा ने बुलाया, बाबा ने इतना लाइटली कहा कोई बात नहीं और आ जाएगा, हो गया, बीती सुबीती, लो बच्चे पर्ची मिल गई ना, इसको एंट्री कर दो। बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मैं कैसे भूल गया, मेरी मत्ती को क्या हो गया। ऐसा भी होता है, आजकल तो जानबूझ के भी कई कर लेते हैं। अब ऐसा हो गया तो क्या करें, अखाड़ा खोल देवे या किसी को यज्ञ से निकाल देवे, कुछ नहीं कर सकते। जिसने किया एक वक्त ऐसा आएगा वो स्वयं ही रियलाइज करेगा, फिर उससे जाके माफी मांगी उसने। बात क्यों बढ़ जाती है, बाप भूल जाता, क्यों भूल जाता है, बात बड़ी बाप भूला, फिर योग उस बात से ही लगेगा, जिससे संबंधित बात है ना, उसी का ही मुखड़ा सामने आएगा, क्योंकि हमने उसको दिल में स्थान दे दिया, क्षमाशील बने नहीं। आजकल क्यों बात बढ़ जाती है, जिद और सिद्ध बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा एक बार क्षमा का भाव हो, रियलाइजेशन का, तो बात समाप्त हो जाती है। हम सब की तरफ से ये होना चाहिए, डन इज डन, फुल स्टॉप। इससे हमारी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। घर में से एक ज्ञान में चलता है, शेष परिवार नहीं चलता है, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, उनको क्षमा कर देते हो, लेकिन जो ज्ञानी है उनको हम क्षमा ही नहीं करते। क्या उसने बाप को पहचानने का दोष किया था क्या? उनको भी तो क्षमा करना ही चाहिए ना। इतना अधिक हम अपनी बुद्धि में नेगेटिव बसा लेते हैं जो पॉजिटिव की मार्जिन ही नहीं रखते हैं। इसलिए हम श्रेष्ठ संकल्पों का सुंदर बगीचा अपने मन को बनावे, सुगंध हो अंदर में। जब मेरे ही अंदर से सोच की स्मेल आ रही है तो दूसरे को भी तो वही वाइब्रेशन पहुंचेगा। एक बारी की बात है कि दो बहनें कमरे में रहती होंगी और एक के संस्कार ठीक नहीं थे। दूसरी ने जाके मम्मा को बोला, रात को गुड नाइट करने जाते थे। एक तो ये नियम पालन होना चाहिए, बाबा के पास जाके रात को गुड नाइट करो, सुबह गुड मॉर्निंग जरूर करो। और बाबा तो जो यज्ञ में रहते हैं उनके लिए कचहरी भी करते थे। इसका मकसद यही होता था कि कोई बात है तो फिनिश, समाप्त, और हम सभी अपने मन को धो डाले बाबा की याद में। आजकल धोते कम है, रोते अधिक है। धोते कम है, रोते अधिक है। रोते हैं तो खोते हैं, खो देते हैं ना। इसलिए मम्मा क्या करती थी, वो एक बहन ने तंग होके मम्मा के पास चली गई रात को 10 बजे गुड नाइट करने के लिए। कहा, मम्मा मेरे जो कमरे में रहती है ना, वो बहुत परेशान करती है, चोरी भी करती है, झगड़ा भी करती है, सब कुछ करती है। मम्मा आज ऐसे उससे झगड़ा हो गया, ऐसे हो गया। मम्मा चुप करके मुस्कुराती रही। अभी आने वालों को इतना देख रहे हैं कि जो कितनी बातें निकल गई हैं। व्यक्ति कभी नहीं देखे क्या? ये बात तो चली जाएगी फिर। तो उसने सोचती, मम्मा के बारे में भी सोचने लग गई। मैं मम्मा को खास कहने गई, मम्मा ने उसको बुलाया ही नहीं, उसको समझाया ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं कहा। कम से कम बुला के समझाना तो चाहिए था। और मम्मा ने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, क्या फायदा हुआ मेरे जाने का। और रात भर ऐसे ही सोचती रही। सुबह सुबह मम्मा को गुड मॉर्निंग करने के लिए गई तो मम्मा दृष्टि दे रही थी ठीक उसी तरह मुस्कुराते हुए जैसे रात को दे रही थी। तो वो बहन भी आ गई जिसकी कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी, वो भी आ गई। वो आके मम्मा से माफी मांगती है, गले मिलके रोती है, मम्मा मैंने ये गलती की है, मैं आगे से नहीं करूंगी। और जो रात को कंप्लेंट लाई थी ना, उसके आगे भी हाथ जोड़ के माफी मांगने लगी, बहन मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी। अब उस बहन का और सोच चला। रात सबसे जिन्होंने सोचना है सोचना है। हम अपने मन को की डोर इतनी ढीली न छोड़े जहां मर्जी चलती जाए, संकल्प चलते जाए। ये बहुत भयंकर बात होती है। वो सोचने लगी, रात को 10 बजे के बाद तो मैं गई, सब सो गए, सवेरे सवेरे सबसे पहले मैं आ गई, मम्मा ने समझाया कब? और ये रियलाइज कर रही है अपनी गलती, कब से समझा दिया? अब उसकी सोच उस तरफ चलने लगी। द वेरी नेक्स्ट डे सुबह बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने कहा, बच्चे मम्मा आत्माओं को कैसे ठीक करती है? मम्मा कहती नहीं है, मम्मा सकाश देती है। अमृत वेले योग करते हुए सबको सकाश देती है। उसमें उस आत्मा को अपने आप टचिंग पहुंच जाती है। इस पर भी कई आके पूछते हैं, बहन जी मेरी फलानी रिश्तेदार ठीक चलती नहीं है, मैं अमृत वेले उसको योग दान दूं? शिव बाबा के बदले उससे थोड़ी योग लगाना है। किसी एक व्यक्ति को इमर्ज करके नहीं करो, शिव बाबा को याद करके पूरे विश्व के ग्लोब पे मैं बैठी हूँ, बाबा से शक्ति ले रही हूँ, बाबा मुझे मास्टर दाता बनाना चाहते हैं, मैं उसको याद करूँ, बाबा स्वतः ही ठीक करेगा जिसको करना। हमारी अवस्थाएं क्यों गड़बड़ होती हैं? क्योंकि हम व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, बातों में, चीतों में, चीत अलग क्यों का? एक होते हैं जैसे पशु खा के फिर निकाल निकाल के जुगाली करते हैं। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, उसको चित्तो चबाओ ज्ञान को। हम उस सुनी हुई बात तो सिरे रात सुनी होगी, सिरे सिरे वही बात याद आएगी, हम उसको चीतने लग जाते हैं, चित्त पे देते हैं। तो बातों में चीतों में जाके हमारी अवस्था खराब हो जाती है। आदरणीय दादी जी पहुंच रही हैं, नमस्कार।